15।
अदीब फैजाबाद स्टेशन पर उतरा ही था कि एक जन्नाटेदार झापड़ उसको पड़ा। ये झापड़ एक नारे ने मारा था। स्टेशन की दीवार पर लिखा हुआ नारा सामने खड़ा था, बोला, फैजाबाद अयोध्या आए हो तो पहले इसे पढ़ो। लिखा था, अपने धर्म स्थानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बजरंग दल। तुम कहां से आए हो? उसने नारे से पूछा। मैं दिल्ली से आया हूं। तुम कहां के रहने वाले हो? मैं रहने वाला तो दिल्ली का हूं, लेकिन मेरा जन्म गोरख आश्रम गोरखपुर में हुआ है, नारे ने उत्तर दिया। तुम फैजाबाद अयोध्या में कहां रहते हो? मैं यहीं स्टेशन पर रहता हूं। शहर नहीं जाते? कभी कभी जाता हूं जब हमारे जत्थे आते हैं, और वैसे यहीं रहता हूं। शहर के लोग मुझे पनाह नहीं देते। इसीलिए स्टेशन पर रहते हो? जी हां, ज्यादातर। मैं मीर बाकी ताशकंदी के घर जा रहा हूं। अभी तो आज्ञा दो, लौटकर मैं तुमसे बात करूंगा। नारा खुद ही चीखने लगा, अपने धर्मस्थानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अदीब जब स्टेशन के बाहर आया तो रिक्शा और ऑटो वालों की भीड़ ने उसे घेर लिया। तभी उसने एक करिश्मा देखा। वो नारा आसमान में बादलों की तरह घुमड़ने लगा और कुछ ही देर में अंधड़ चलने लगा और रेजगारी नोटों की बारिश होने लगी।
पृष्ठ 79।
अंधड़ इतना तेज था कि रेजगारी और नोट अयोध्या की ओर उड़ते चले जा रहे थे। कुछ गिरते पड़ते तो गरीब के हाथों में आ जाते थे, बाकी उड़ते हुए सरयू की दिशा में बढ़ते जाते थे। मीरबाकी के गांव सनेहुआ पहुंचने से पहले जब वो फैजाबाद की सड़कों से गुजरा तो उसे सब सामान्य सा ही लगा। वही बाजार, वही गहमा गहमी और वही सामान्य जीवन। बच्चे रिक्शों में लदे स्कूल जा रहे थे, मुसलमान औरतें बुरका पहने बाजारों में खरीद फरोख्त कर रही थीं या चूड़ियां पहन रही थीं। हिंदू मनिहार उनकी नाजुक कलाइयों में चूड़ियां पहना रहे थे और वे बुरके का पल्ला उठाए मुंह खोले उनके सामने बैठी थीं। वे मनिहार उनके भाई, चाचा या मामा थे। बाजार खाने पीने की चीजों और रेडीमेड पोशाकों से भरे हुए थे। वहां न हिंदू दुकानें थीं न मुसलमान दुकानें, वहां सिर्फ दुकानें थीं। गंदगी और भीड़ उतनी ही जितनी कि पूरे हिंदुस्तान में है। पोशाकें सब वही जो सब पहनते हैं। किसी दीवार ने नारा नहीं लगाया। खून से नहाई या गोलियों की बौछार से छिदी कई दीवार कराहते हुए अपनी कहानी सुनाने नहीं आई, और उसे इस बात से राहत मिली कि फैजाबाद की दीवारें अपने बच्चों की देखभाल कर रही थीं। वे जन्म घुट्टी बेच रही थीं, लाल तेल और दूध की बोतलें बेच रही थीं। नौजवान उन दीवारों से मोटरसाइकिलें या टीवी खरीद रहे थे। सुंदर औरतें होठों की लाली और ब्रेसरी खरीद रही थीं, और नपुंसक लोग उन दीवारों में बैठे गुप्त रोगों के हकीमों और वैद्यों से दंदनाते जोश और मर्दानगी की दवाओं की खरीद फरोख्त कर रहे थे। सब बच्चों के खिलौने एक से थे, काठ और प्लास्टिक के खिलौने, रबर की छोटी छोटी चप्पलें, वही नीली, हरी या बादामी। किसी ने उनकी चप्पलें या खिलौने या दूध की बोतलें, उनकी निप्पलें या उन्हें साफ करने के ब्रश अलग अलग नहीं बनाए थे। उनकी जिदों के ढंग भी एक ही थे। वे वैसे ही अपनी माँ की चूड़ियों भरे हाथ खींच रहे थे और अपनी पसंद की दुकानों की ओर ले जाना चाहते थे। सब उसी तरह पत्ते पर चाट खा रहे थे और पान खा के बुरके वाली सुंदरी के होंठ उसी तरह हल्के गुलाबी से रचे हुए थे जैसे गुड़हल के फूलों के। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो कुछ और ही देखने आया था। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी रह गई थीं। भागा भागा वो जनमोर्चा अखबार के दफ्तर में घुस गया था ये पूछने कि ये सब जो उसने देखा है सच है या किसी चमत्कारी ताकत ने अपना मायाजाल फैला रखा है। क्या यही फैजाबाद है या वो किसी दूसरे शहर में आ गया है, क्योंकि ये तो फैजाबाद नहीं, कोई तिलिस्माबाद लगता है। संपादक शीतला सिंह उसे हैरत से देखते रह गए। वहां रुकना अजीब लग रहा था, अतः वो निकल पड़ा।
पृष्ठ 80।
वो एक खूबसूरत मकबरे के पास से गुजर ही रहा था कि एक निहायत सूखे से पिंजर हाथ ने उसका कंधा थाम लिया। वो घबरा गया, मुड़ के देखा तो देखता ही रह गया। उसकी परदादी की तरह बूढ़ी और निहायत खूबसूरत एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल चांदी के थे, चेहरे पर सरयू की लहरों जैसी झुर्रियां थीं। उस बूढ़ी ने पूछा, नहीं पहचाना? मैं फैजाबाद की बहु बेगम हूं। मैं तो नहीं गई अपना फैजाबाद छोड़ के, वो चला गया, अपनी राजधानी भी लखनऊ उठा ले गया। मैंने कहा, जा, तू ही मेरा अकेला बेटा नहीं है, मेरे हजारों लाखों बेटे हैं, मैं तो फैजाबाद नहीं छोड़ूंगी। दादी, आप रहती कहाँ हैं? अरे, तुझे इतना भी नहीं मालूम, मैं इसी मकबरे में रहती हूँ, यहीं दफन हूँ। मैंने देखा कि तू यहाँ से गुजर रहा है तो सोचा तुझसे मिल लूँ। सदियों बाद ये मन किया कि तुझे देख लूँ, तो अमीर खुसरो के खानदान से है ना, अदीब है ना? हाँ अम्मी जान, अदीब हूँ। अमीर खुसरो एटा के थे, मैं मैनपुरी का हूँ। 30 मील का फासला है। 30 मील क्या होता है? अदीब तो सदियों का फासला तय करता है। मेरे बेटे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर, मीरा भी तो उसी खानदान के बुजुर्ग हैं जिसका तू वारिस है। और इससे पहले कि वो कुछ भी बोले, वो खुद ही बोलती गई। मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया। तुलसीदास भी उसी खानदान का था। खुसरो तो एटा में रहता था, पर तुलसीदास यहीं रहता था अयोध्या में। तू भी यहीं रह, क्यों भटकता है गांव गांव सूबा सूबा? तू बैठ के लिख, तेरा लिखा सदियों के पार जाएगा, सबके पास जाएगा। इस उम्र में तेरे माथे पर ये लकीरें, आंखों में धुआं और सांस में इतना गुबार, कहां से भाग के आया है तू? बता मेरे बेटे, बता। दादी, वक्त कुछ ऐसा आन पड़ा है कि मैं कहीं चैन से बैठ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, लिख नहीं पाता। आजकल मैं खून से नहाता हूं और बंदूकों की गोलियां खा के जिंदा रहता हूं। अरे बेटे, हाँ एक गोली मुझे भी लगी थी। अरे पूछो, इन कश्मीरी मुजाहिदों का मैंने क्या बिगाड़ था? पर बेटा, तू अपना ख्याल रख, कोई राजा महाराजा, बादशाह शहंशाह, नेता प्रधानमंत्री अपने वक्त का जवाब नहीं देगा। सब अच्छा या बुरा करके मर जाएंगे। जवाब सिर्फ तुझे देना पड़ेगा या कौम को देना पड़ेगा। इसीलिए तू अपना ख्याल रख मेरे बेटे, तू अपना ख्याल रख। इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए बहू बेगम अदृश्य हो गई।
पृष्ठ 81।
जेब में से अर्दली ने दस्तक दी। आप अपना काम पूरा कीजिए। क्या? बहुत खूब, यह भी भूल गए, आप अदालत मुलतवी करके किस लिए आए थे? याद कीजिए और मीरबाकी के गांव का पता पूछिए। ओ, उसने कहा और पास से गुजरते आदमी से पूछा, आपको मीरबाकी के गांव का पता है? कौन मीरबाकी? और यह आवाज गूंजती चली गई, कौन मीरबाकी, कौन मीरबाकी? उसने जिससे भी पूछा उसने यही जवाब दिया। उसका पता जब नहीं मिला तो वो एक छापेखाने में घुस गया। वहां सिर्फ दो ही चीजें छप रही थीं, अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास और चंदे की रसीद बुकें। रसीद बुकों के गट्ठर लद लद कर अयोध्या के मंदिरों में जा रहे थे। डाकखानों पर भीड़ लगी थी। राम मंदिर समितियों, भजन मंडलियों और न जाने किन किन दलों और परिषदों के एजेंट अपनी अपनी संस्था की रबर मोहरे लिए मनी ऑर्डरों से आए चंदे को डाकखाने से वसूल रहे थे। आखिर अर्दली जेब से निकला और उसने अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास पुस्तक में से मीरबाकी का पता खोजकर वो पन्ना आगे बढ़ा दिया। सनेहुआ गांव मीरबाकी का गांव, विवरण सामने था। फैजाबाद से 4 मील दूर। गर्मी, कच्चा रास्ता, तेज धूप, उड़ती हुई गर्म धूल, किसी तरह वो गांव के बीचों बीच पहुंचा। गेहूं अभी कटा था, खेत खाली पड़े थे, खलिहान भरे हुए थे, कच्चे पक्के घरों का गांव। 10-12 बच्चे खेल रहे थे, कोई बड़ा और बुजुर्ग नजर नहीं आया था उसे। तब एक बच्ची ने आकर पूछा, अब्बा से मिलना है। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? उधर खटिया में पड़े सो रहे हैं। अर्दली ने उन्हें जाकर जगाया, वो भी पास पहुंच गया। यहां कोई जानने वाला है क्या कि इस गांव में मीरबाकी ताशकंदी के वंशज कहाँ रहते हैं? कौन मीरबाकी ताशकंदी? इस अनेहुआ गांव है, पूछना हो तो ताशकंद गांव में जाके पूछो, यहां का पूछते हो? उन बुजुर्ग गांव वाले ने कहा और छप्पड़ से उठकर भीतर चले गए। फिर वे नहीं निकले। अजीब मुसीबत में फंस गया था वो। धूप से झुलसते गांव को उसने देखा। पीछे एक छोटी सी मस्जिद थी और एक मजार, उस मजार के सिरहाने एक लैंप लगा था।
पृष्ठ 82।
उसने अपने क्रू को आवाज लगाई। फौरन कैमरा और साउंड वाले आ गए। प्रोडक्शन यूनिट भी सक्रिय हो गया। इस गांव में और कोई मस्जिद या मजार तो दिखाई नहीं पड़ता। यही होगी मीरबाकी की बनवाई मस्जिद और यही होगी उसकी मजार, उसने कहा। तो उसके क्रू के लोग जूते उतार कर मजार के ऊंचे आंगन पर चढ़ गए। अभी वे फिल्मिंग शुरू ही करने वाले थे कि पिछली गली से एक भीड़ दौड़ती हुई आ पहुंची और चीखने चिल्लाने लगी, आप लोग हमारे भारत में आग लगाने आए हैं। ये एक मौलवी नुमा अधेड़ की आवाज थी। आप बिना पूछे ऊपर कैसे चढ़े? इजाजत किससे ली? हैं कौन आप? नीचे उतरिए, आखिर आपका मकसद क्या है? ये गांव आपका है कि मुंह उठाया घुसा है? चीखती चिल्लाती भीड़ किसी भी क्षण बेकाबू हो सकती थी। कोई यूं ही एक ईंट भी उठाकर फेंक देता तो पथराव शुरू हो जाता। अदीब बहुत नरमी से उस भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब तक गांव के नौजवानों का एक गुल भी तहमत संभालता कुर्ते पहनता भीड़ में शामिल हो गया। तनाव काफी बढ़ गया था। तभी दो फरिश्ते बीच में आकर खड़े हो गए। उन दोनों देवदूतों में से एक ने पहचाना, अरे भाई, ये तो अपने शीतला सिंह बाबू हैं, जनमोर्चा वाले। ये कोनो गलत काम नहीं करी है। शांत खामोश और उस चिलचिलाती धूप में ये चमत्कार हुआ कि सारे लोग तैश और गुस्से को थूक कर आस पास जमा हो गए। वे जानना चाहते थे कि वो सब लोग किस काम से आए हैं। शीतला सिंह ने उन्हें सारा मकसद बताया तो वही मौलवी नुमा अधेड़ सामने आए, बताने लगे, अब बात यह है साहब कि हम यहाँ चैन से रहते हैं, पूरा गांव मुसलमानन का है, इसमें शिया भी हैं और सुन्नी भी, और मैं, आप क्या हैं? मेरी परचूनी की दुकान है और मैं इसी मस्जिद का पेश इमाम भी हूँ। यहाँ कोई मीरबाकी नहीं रहा, न उसका खानदान कोई है यहाँ। तो ये मजार किसका है? बोस ने पूछ लिया।
पृष्ठ 83।
ये तो हमारे सामने वाले के उनके बुजुर्ग रहे और हम सब गांव वाले भी उनको बुजुर्ग मानते हैं, उन्हीं का मजार है। अब आप ही सोचें, का मीरबाकी का मजार और की मस्जिद इतनी मामूली हो सकती है? ये तो आग लगाए दी है गलत तारीख लिखने वालों और दिल्ली के अखबारों ने। यहाँ आए के तस्वीरें उतारी और जाके लिख दिया ई मीर बाकी की कबर है और ई उई की बनवाई मस्जिद। सालन की टांग तोड़ देनी चाहिए। बस आग लगाते घूम रहे हैं सब, इन्हें सोचते कि भारत का होगा। पहले यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहे, नहीं लड़वा पाए तो अब शिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं। अब तक पानी शरबत बिस्कुट और मूंग की दाल मोट आ गई, खातिर शुरू हो गई। हम जानत हैं आप तो आग बुझाए में लगे हो, आप जौन तस्वीर चाहे उतार लो। ये सुनते ही विनोद कैमरा लेकर फिर मजार के आंगन पर चढ़ गया और बातचीत का सिलसिला फिर जारी हो गया। वहीं पेड़ के नीचे एक बड़ा सा दीप स्तंभ बना था, इसे दिखाते हुए वो अधेड़ बताने लगे, इस पर 50 चिराग जलाते हैं हम जब ताजिया उठाते हैं। ये दीपघर है, हम सब हिंदू रहे तब अपने पुरखन ने बनवाया रहा होगा। अब हम ताजिया उठाते वक्त ये पे चिराग जलाते हैं। मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाता है? मैं ही पढ़ाता हूँ, परचूनी के वही दुकान वाले अधेड़ बोले। गांव में यही एक मस्जिद है? हाँ, इसी में दोनों नमाज पढ़ लेते हैं, शिया भी सुन्नी भी। पहले हम पढ़ लेते हैं फिर सुन्नी, कोई झगड़ा नहीं है, पर लोग करवाना चाहते हैं यही बात पे। वैसे शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या है? अदीब ने पूछा। दोनों नहीं बाबू साहेब, एक बुजुर्ग ने कहा, जौन अली की शिद्दत से मानते हैं तौन शिया, जौन सुस्ती से मानते हैं तौन सुन्नी। तभी चीखती चिल्लाती छाती पीटती एक अधेड़ औरत आ गई। सिया सुन्नी गए भाड़ चूल्हे में, ए इमाम साहब, मौत बिल्किस को तो तुमने मरवा दिया, इका जिम्मेदार है वो अमीरात का बिलाल, ये क्या वारदात है? अजीब के कान खड़े हुए। अर्दली तब तक इधर उधर मुआयना करके उसके पास आ चुका था। अदालत की जरूरत को समझ कर वो फौरन बिलाल को बुलाने गया, पर खाली हाथ लौट आया।
पृष्ठ 84।
हुजूर, बिलाल का कहीं पता नहीं है, न वो इस दुनिया में है न उस दुनिया में। ये कैसे हो सकता है? अदालत बोली, सारे धर्मों और सभ्यताओं ने सिर्फ दो दुनिया का उसूल आयत किया है, तीसरी दुनिया कैसे हो सकती है जिसमें जाके बिलाल छुप जाए? पता नहीं हुजूर, पर वो मुझे मिला नहीं, इतना जरूर मालूम हुआ कि वो मिस्र की तरफ भाग गया है। मिस्र की तरफ? तब तो वो जरूर पकड़ में आ जाएगा, आखिर मिस्र वाले मुझे कैसे भूल सकते हैं? हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब इंसान और इंसान का खून एक था, हमारी सभ्यता एक थी, हम सब दरिया नील की गोद में पले हैं, हमने ही मिस्री सभ्यता को जन्म दिया था। मिस्र की सभ्यता मेरी ही तो देन है। मिस्र वालों से जाके कहो कि जिसने तुम्हें हमारी सभ्यता दी है उसे बिलाल की जरूरत है। क्या दरिया नील के देशवासी भूल गए कि सीन से लेकर भूमध्य सागर तक का 500 मील का वो जरखेज हिस्सा मैंने ही सींचा था, ईसा से 6000 साल पहले, और फिर फारोह चियोप्स का पिरामिड मैंने और मेरे साथियों ने ही बनवाया था जिसे हेरोडोट्स देखने आया था। अरे वही यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स, सम्राट मेनिस ने क्या किया उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, पर पुरातन मिस्र को आत्माओं के आगमन और पुनरागमन की परिकल्पना मैंने ही दी थी। सर चुप रहो। हाँ, आज से 6000 साल पहले मैंने ही ये कल्पना की थी कि मनुष्य में दो आत्माओं का निवास होता है, एक वो जो लौकिक है, दूसरी वो जो पारलौकिक है। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने पुराने घर को खोजती आती है, इसीलिए मैंने सोचा था कि पिरामिड जरूरी है जिसमें उस आत्मा के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि आत्मा जब चाहे तब अपने लौकिक शरीर में आ जा सके। और जानते हो तुम सर, जानते हो तुम, मुझमें सिर्फ नदियां ही नहीं सभ्यताएं बोलती हैं। उन पिरामिडों की आत्मा के आवागमन के लिए ही मैंने रास्ते बनाए थे, ताकि आत्माओं को भटकना न पड़े हमारी तरह जैसे आज हम भटक रहे हैं। अदीब आलिया, बाबर ने जैसे परेशान होकर टोका, सुनते जाओ बाबर, अगर इंसान की इंसानी जड़ों को नहीं पहचानोगे तो तुम आज की दुनिया के दुख दर्द को नहीं समझोगे। मुझे आज की दुनिया से लेना देना क्या है? अदालत आलिया, बाबर ने कहा।
पृष्ठ 85।
लेना देना है क्योंकि हम जो दुनिया बनाते हैं उससे आने वाली नस्लें वाबस्ता होती हैं। अगर तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होता तो तुम आज यहाँ इस अदालत में मौजूद न होते। कोई जिंदगी स्वतंत्र नहीं है, वो आगे और पीछे जुड़ी हुई है। जी तो सुनो, तुम या कोई भी, सभी तो मिस्र की सभ्यता से जुड़े हुए हो। अपनी मिस्र की सभ्यता में मैंने ही पुनर्जन्म की परिकल्पना पैदा की थी। मैंने मृत्यु को अंतिम सत्य नहीं माना था, मृत्यु के बाद फिर जीवन, यही सबसे बड़ा सत्य था। और शायद आपने ही प्रेत पूजा की परिपाटी तोड़कर अद्वैतवाद की स्थापना की थी। अद्वैतवाद यानी एकेश्वरवाद, फ्योहरर बहुत अदब से बोला। तुमने इसमें शायद क्यों लगा दिया? शायद नहीं, बिलाशक। और सूर्य को ही हमने परमेश्वर माना था, उसे श्रद्धा से रा पुकारा था। रा ही हमें शक्ति देता था, ऊर्जा देता था, वही मौसमों का कर्ता था, सृजन और सुख का दाता था। एकेश्वरवाद को पुख्ता करने के लिए तब फारोह अमेनहोतप ने अमून रा को स्वीकार किया था, ताकि थीप्स और कर्नाक की दक्षिणवर्ती संस्कृत को उत्तरवर्ती मेम्फिस की ए संस्कृति से एकीकृत किया जा सके। उसी ने सूर्य और सूर्य के चक्र की परिकल्पना की थी, और तब हमारी सभ्यता में ये विश्वास दृढ़ हुआ था कि सूर्य जब अस्त होता है तो मृतकों के संसार में चला जाता है और प्रातः उदित होकर जीवितों के संसार में लौट आता है। अदीब सभ्यता की इस कहानी को लगातार बताता जा रहा था, पर उसे ध्यान से कोई नहीं सुन रहा था। बाबर ने अर्दली की ओर देखा तो उसने फुसफुसाकर कहा, हमारे साहब कभी कभी बहक जाते हैं और राजनेताओं की तरह ऊटपटांग भाषण देने लगते हैं, पर क्या करें, आखिर इंसान की इस रक्तरंजित नियत के बारे में फैसला तो उन्हें ही देना है। इस अदालत को कौन रोक सकता है? तभी दस्तकें फिर पड़ने लगीं, फिर वही हाहाकार और कोहराम मचने लगा। अदीब ने पहले तो कानों पर हाथ रखे, पर जब उस भयानक शोर को नहीं सह पाया तो कड़कती बिजली सी आवाज में कहा, खामोश, दुनिया से तो तुम परास्त होकर यहां चले आए, अगर मैंने तुम्हें यहां से निकाल दिया तो कहां जाओगे? बोलो कहां जाओगे? कोहराम कुछ कुछ थमने लगा तो अदीब फिर भाषण पर उतर आया, देखो हर सभ्यता हर धर्म में ब्राह्मणवाद पैदा हुआ। भारत में तो वो बहुत देर से आया, पर मिस्र की सभ्यता में भी पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद पैदा हुआ।
पृष्ठ 86।
ये जड़ता का प्रतीक था। मेरे मिस्र में भी देवताओं के नाम पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता था वो वहां के मंदिरों के पुजारियों के पेट में जाता था। वे पुजारी उन मंदिरों में वैभव से रहते थे, वे श्रम फौजी सेवा और करों से मुक्त थे। ये पुरोहित पुजारी और ब्राह्मण ही मिस्र की सभ्यता के पतन के कारण बने। यही सुमेरियन सभ्यता में हुआ, जो सूर्य के नहीं चंद्र के पूजक थे, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। हुजूर, अदीब आलिया, बाबर चीखा, सुनने दो। उससे ज्यादा जोर से फ्यूहर चीख पड़ा, तो सुनो, सुमेरियन संस्कृत के ब्राह्मणों ने मृतकों और आत्माओं के लिए पिरामिड नहीं बनवाए, बल्कि देवताओं के नाम पर अपने लिए मंदिरों का निर्माण किया। जब सुमेरियन सभ्यता के ब्राह्मण स्वार्थी हो गए तो उस सभ्यता का भी विनाश हो गया, और तब उस विनष्ट सभ्यता पर जन्मी बेबिलोनियन सभ्यता। बेबिलोनियन सभ्यता ने पहली बार मिलीजुली संस्कृत को मंजूर किया था। दजला और फरात की घाटी इस मिलीजुली संस्कृत से मालामाल हो उठी थी, लेकिन बेबिलोनिया की सभ्यता में भी कुलीनता का दंभ पैदा हुआ। उसमें भी अलिखित वर्ण बनते गए, यही असीरियन, हित्ती, आर्मेनियन, हिब्रू, एरोन और ग्रीक देशों के साथ हुआ। पर ये सभ्यताएं जी नहीं सकीं, क्योंकि इनमें भी कुलीनता के नाम पर उन लोगों का उदय हुआ जो मंदिर, पुराण और पवित्रता के नाम पर स्वयं को पुरोहित पुकारते थे। ये पुरोहित ही असल ब्राह्मण थे, जो जातीय नहीं स्वार्थ केंद्रित कुलीनता और ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे, यानी जो जड़ता को प्रश्रय देते थे और वक्त को बदलने नहीं देते थे। अभी अदीब पागलों की तरह घूम घूम कर और कभी कभी बाल नोचते हुए अपना भाषण दे ही रहा था कि फिर भयानक दस्तकें पड़ने लगी। मुर्दों की दुनिया में हाहाकार मचने लगा, आर्तनाद और विलाप के स्वर तेज तेज तेजतर होने लगे। तो घबराकर अदीब ने अर्दली से बहुत चिंतित होकर पूछा, ये भयानक शोर कैसा है? सर, जब आप भाषण देने लगते हैं तो संसार के किसी हिस्से में कहीं न कहीं रक्तपात हो जाता है। कोई हिंस आदमी जाग पड़ता है और नस्ल या मजहब के नाम पर लोगों को भड़का देता है, और वो मजहब या नस्ल अपना बदला चुकाने लगती है। पर ये कौन लोग हैं जो सभ्यता की कहानी को रोककर बर्बरता की दास्तानें बताना चाहते हैं?
पृष्ठ 87।
सर, ये 39 लोग दक्षिण अफ्रीका के बोईपोतोंग इलाके से अभी अभी मर कर आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं। ये काले अफ्रीकी हैं जिन्हें गोरी चमड़ी वाली साउथ अफ्रीकी सरकार ने ही मरवाया है। लेकिन वहां तो नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डी क्लार्क की गोरी सरकार में समझौता हो चुका है कि वे मिलजुल कर नया संविधान बनाएंगे और कालों का उनके नैसर्गिक अधिकार देंगे। फिर यह हत्याकांड क्यों? सर, अंग्रेज गोरों ने अफ्रीकनों की एक पार्टी इनखरा फ्रीडम पार्टी को तोड़ लिया है और यह हत्याकांड उन्हीं का करवाया हुआ है। तो ये 39 मुर्दे क्या चाहते हैं? यह इंसाफ चाहते हैं। पर ये दूसरे लोग कौन दस्तकें दे रहे हैं? जब तक दस्तकों का सिलसिला बंद नहीं होगा, इंसाफ कैसे होगा? क्या किया जाए हुजूर? आप इंसाफ करते चलिए, दस्तकें अपनी रफ्तार से पड़ती रहेंगी। लेकिन दस्तकों की रफ्तार बहुत तेज है। तब सर, आपको अपने इंसाफ की रफ्तार तेज करनी होगी। जब इंसाफ तेज रफ्तार से चलेगा तो कोई न कोई हल निकलता जाएगा। तभी उबासी लेते हुए बाबर और फ्योहरर ने कहा, अदीब आलिया, अब हमें जाने की इजाजत दी जाए। हमारी खबरों पर फातिहा पढ़ने वाले लोग आने वाले हैं। अगर हम उन्हें वहां नहीं मिलेंगे तो आपके लिए वबाल खड़ा हो जाएगा और 10-20 लाख बेगुनाह लोग मार डाले जाएंगे। ठीक है, अदीब ने कहा, तुम दोनों जाओ, पर सिवा अपनी कब्र के तुम्हें और कहीं जाने की इजाजत नहीं है, ताकि जब जरूरत पड़े तुम्हें बुलाया जा सके। बाबर और फ्योहरर रुखसत हुए और तेजी से दस्तकें पड़ने लगी और लोग चीखने लगे, हम कराची से आए हैं, हम सिंधी हैं, हमें पाकिस्तानी फौज ने मुहाजिरों के कहने पर मारा है, हम लेबनानी हैं, हमें क्रिश्चियनों ने मारा है, हम मोल्दोवा से मर कर आए हैं, हमें रूसियों ने मारा है, हुजूर, हम बोस्निया से आए हैं, हमें सर्बों ने मारा है। ठीक है, अब मर गए हो तो चैन से बैठो। जिंदा रहने के लिए बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, मरकर आदमी चैन की जिंदगी बसर करता है। यही मिस्री सभ्यता ने हमें बताया था और मिस्री तथा आर्य सभ्यता ने इसीलिए पुनर्जन्म को माना था।
पृष्ठ 88।
फर्क सिर्फ इतना था कि सिंधु सभ्यता ने पुनर्जन्म के सत्य को अलग अलग योनियों में बांटा हुआ माना था, पर मिस्री सभ्यता ने मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही मंजूर किया था। इसीलिए मैं मिस्री सभ्यता का समर्थक हूं, क्योंकि हम मनुष्य योनि को प्राप्त कर लगातार सभ्य होते आए हैं। सरकार, क्या कह रहे हैं आप? अगर हम लगातार सभ्य होते आए हैं तो आपकी अदालत में इन दस्तकों की जरूरत क्यों है? हाँ, ये तो सही सवाल है, कहते हुए अदालत कुछ सोचने लगी। फिर बहुत परेशान होकर उसने हुक्म दिया, जिंदगी को बुलाओ, उसे फौरन से पेशतर हाजिर करो। जिंदगी? अर्दली ने भौंहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, जिंदगी यानी कहानी, जो भी समझो, कहानी और जिंदगी में आज दूरी कहाँ है, अदालत ने कहा। अर्दली जिंदगी और उसकी कहानी को लेने के लिए चलने लगा। पदेकायक रुक कर पूछा, पर सरकार, आपने तो बिलाल को मिस्र से पकड़ लाने का हुक्म दिया था, उसे लाऊं या नहीं? क्योंकि सरकार, ये अपने हिंदुस्तानी लड़की बिल्किस बहुत रो रही है और अपना इंसाफ मांग रही है। ओह, मैं भूल गया, जाओ और कहीं से भी बिलाल को हाजिर करो। अर्दली एकाएक गायब हुआ और फौरन अरब अमीरात की सामाजिक समस्याओं के अहदेदार मोहम्मद बिलाल को कान से पकड़ कर ले आया और उसे पेश कर दिया। हुजूर, बिलाल, इसे पकड़ लाया, यह हाजिर अदालत है। पर बिलाल समझ ही नहीं पाया कि यह कैसी अदालत थी और उसे क्यों पकड़ कर लाया गया है। पर जब उसे उसके इल्जाम के बारे में बताया गया और पूछा गया कि उस बेचारी हिंदुस्तानी लड़की बिल्किस किन हालात में मारी गई, तो उसने अदालत को ही कायर से देखा। बिलाल बिफर पड़ा, ओह, बिल्किस, लेकिन एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी इतनी कीमती नहीं कि उसके बारे में मुझसे जवाब मांगा जाए। खुद तुम्हारे मुल्क के दंगों में कितनी बिल्किस रोज मरती हैं, उनके साथ जिना किया जाता है, तब तुम खामोश रहते हो, तब अपने लोगों से तुम जवाब नहीं मांगते।
पृष्ठ 89।
तभी मुर्दा बिल्किस की सिसकियों की तेज आवाज आने लगी और मुश्किल ये थी कि बिल्किस की सिसकियों के साथ ही कोरिया की एक 70 साल औरत किम हक्सुन भी थी। वो भी लगातार रोई जा रही थी। अदालत सकते में आ गई। उसने परेशानी से कहा, मुर्दा लोगों को जिंदा लोगों से अलग किया जाए, नहीं तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। मेरे कान में अभी एक जापानी ने कानूनी नजाकत का मुद्दा उठाया है और कहा है कि किम हक्सुन अभी जिंदा है और उसे मेरी अदालत में हाजिर होने का कोई हक नहीं है। कहते हुए अदालत ने अपने माथे पर दस्तक दी। ये एक संवैधानिक सवाल है, मैं सिर्फ मुर्दों की शिकायतें सुनने का हकदार हूं, पर हुजूर, इन कानूनी बारीकियों में मत जाइए, अन्याय अन्याय है, अन्यायग्रस्त औरत की जिंदगी तो मौत से बदतर होती है। तुम ठीक कह रहे हो महमूद अली, अदालत चीखी तो पूरी सृष्टि कांप उठी। नहीं, मैं मुर्दों के अलावा उन जिंदा लोगों की फरियाद सुनने का हक भी लेता हूं जो जीते जी मुर्दा मान लिए गए हैं। पलटकर अदालत ने किम हक्सुन की ओर देखा। हाँ, तुम अपनी कहानी बताओ। किम हक्सुन ने कहा, सर मैं कोरियन हूं। तब मैं 17 साल की थी। वैसे मैं पैदा तो सन 1924 में जिलिन में हुई थी, लेकिन 1941 में मुझे पेचिंग से जापानी फौजियों ने उठाया था और दूसरे महायुद्ध के दौरान मुझसे जापानी सोल्जरों ने लगातार 15 बार प्रतिदिन बलात्कार किया। मुझे तीस हिंताई कोर में भर्ती किया गया, जो सेक्स कोर थी, जिसे कंफर्ट कोर के नाम से पुकारा जाता था। इस कोर में करीब 40,000 औरतें लड़कियां जबरदस्ती भर्ती की गई थीं और हम प्रतिदिन कम से कम 15 जापानी फौजियों की पार्श्विक वासना को सहती और तृप्त करती थीं। तभी बिल्किस की तेज रुलाई फूट पड़ी। किम हक्सुन, ये तो तुम्हारे साथ तब हुआ जब जंग जारी थी, पर मेरे साथ ये तब हुआ जब जंग नहीं थी। मुझे तो सिर्फ तस्वीर और डाक के जरिए ब्याहता के नाम पर इस गंदे पेशे में डाल दिया गया। अदालत आलिया, बिल्किस फूट फूट कर रो पड़ी। हुजूर, न तो मुझे उनकी जबान आती थी न उनकी तहजीब, पर वो अरब था जो मुझे ब्याह का नाटक करके ले गया था। वो मुझसे 28 बरस बड़ा था और जैसे ये किम हक्सुन 15 जापानियों के हवस की शिकार होती थी, उसी तरह मैं हर दिन बीसियों बार अपने उस खाविन की कुदरती और गैर कुदरती हरकतों का शिकार होती थी। फिर जो बच्चा हम जैसों से पैदा होता था उसे तेली बच्चा कहा जाता था और अरब समाज से उसे दूर रखा जाता था।
पृष्ठ 90।
अदालत के माथे पर सलवटें पड़ी। फिर वो चीखी, ओ अरब अमीरात के अफसर बिलाल, किम हक्सुन की असमत का जवाब तो जापानी देंगे, पर तुम इस अदालत को बिल्किस के उस तेली बच्चे की तफसील दो जो जबरदस्ती पैदा किया गया पैदा हो गया। और साथ ही अदालत ने अर्दली की ओर देखते हुए कहा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जिंदगी को हाजिर करो। उन वहशी जापानियों और बिलाल का बयान मैं दर्ज कर लूंगा, पर तुम फौरन जाओ और पाकिस्तान कराची के हवाई अड्डे से उस जिंदगी को लाओ जो जिंदा होते हुए भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। हुक्म तामील करने के लिए अर्दली जैसे ही तेजी से चला कि अदालत पर हमला हुआ। तरह तरह के नारों का शोर बरपा हो गया और तड़ातड़ गोलियां चलने लगीं। कोहराम मच गया और अजीब बात यह हुई कि मुर्दे फिर मरने लगे। वे जिंदा लोगों की तरह ही चीखने कराहने और चिल्लाने लगे, पर यह मालूम ही नहीं चल सका कि कौन किसको मार रहा था, क्योंकि दुनिया के सारे पाकिस्तानों के बाशिंदे अपनी ही कौम के बाशिंदों के खून के प्यासे हो गए थे। अजीब घबरा गया। वो चीखा, यह क्या बदतमीजी है? हम इंसान की तकदीर के फैसले के साथ साथ जिंदा आदमी की जिंदगी का फैसला करने के लिए भी यहां मौजूद हैं। ये मुर्दों के अधिकारों का ही नहीं, जिंदा इंसानों के अधिकारों का भी सवाल है। दोहरी बात मत करो। अगर जिंदा लोगों की जिंदगी का फैसला करने के लिए तुमने अदालत लगाई है, तो फिर तुमने मुर्दों की ये मजलिस क्यों जमा रखी है? एक हमलावर ने सवाल किया। क्योंकि ये मुर्दे अपनी जिंदगी से पहले मारे गए हैं, इनकी जिंदगी अभी बाकी है और मैं उन्हीं मुर्दों से मिल रहा हूं जो अपनी कुदरती मौत से पहले मर गए हैं। जिंदगी और गलत मौत के बीच झूलती इनकी उम्र का हिसाब कौन देगा? अदीब चीखा, कयामत के दिन ये कहां इंतजार करेंगे? इनके कर्म का ब्यौरा किसने दर्ज किया है जिससे इनकी अगली जिंदगी का रूप तय होगा? यह अशांत और अधूरी आत्माएं अकाल मृत्यु के शिकार आत्माएं हैं। इनकी गलत मौत का लेनदार और देनदार कौन है? अदीब चीखता ही रह गया। हमले जारी थे और कहर बरपा था। धुआं, धमाके, तड़तड़ हल्ला, हंगामा और बदमनी, चीखें, चिल्लाहटें और आग। ये बदमनी देखकर अर्दली तेजी से लौटा। जैसे तैसे उसने अपने अदीब की जान बचाई और उसे लेकर भागा।
पृष्ठ 91।